पहला राजा अध्याय 20, अध्याय 20 पद 1 से लेकर 4 तक। और आराम का राजा बेन-हदाद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे, उन्हें संग लेकर उसने शमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर कर उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इसराइल के राजा आहाब के पास दूतों को ये कहने के लिए भेजा कि बेन-हदद तुझसे यूं कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और लड़के वालों में जो उत्तम है वो भी सब मेरे हैं। इसराइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उसने पूरी संपत्ति मांगी, मुझे तेरा सोना और चांदी चाहिए, मुझे तेरी स्त्रियां और जो कुछ तेरे पास है सब चाहिए। आहाब गिर गया था, उसने कहा, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है। तो भी बेन-हदद संतुष्ट न हुआ। अध्याय 20 पद 5 से लेकर 10 तक। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन-हदद तुझसे यूं कहता है कि मैंने तेरे पास ये कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकालें उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इसराइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुला के कहा, सोच विचार करो कि वो मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां बालक चांदी सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार ना किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी ना सुनना और ना मानना। तब राजा ने बेन-हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वो तो मैं करूंगा, परंतु ये मुझसे ना होगा। तब बेन-हदद के दूतों ने जाकर उसे वो उत्तर सुना दिया। तब बेन-हदद ने आहाब के पास कहला भेजा, यदि शमरोन में इतनी धूली निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। उसने कहा, यदि हरेक जन समरिया की धूली अपनी मुट्ठी में भरे तो वो मेरे इतने लोगों के लिए पूरी न होगी, इतने अधिक लोग मेरे साथ हैं और मैं इन लोगों के साथ तेरे विरुद्ध आ रहा हूं। अध्याय 20 पद 11। इसराइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो कि जो हथियार बांधता हो वो उसकी नाई न फूले जो उन्हें उतारता हो। दूसरे शब्दों में, मुर्गी के बच्चे निकलने से पहले मत गिनो। अध्याय 20 पद 12 से लेकर 22 तक। ये वचन सुनते ही वह जो और राजाओं समेत डेरों में पी रहा था उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पंक्ति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पंक्ति बांधी। तब एक नबी ने इसराइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, ये बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इसे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इसराइली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेनहदद अपने सहायक 3200 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले, तब बेनहदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे, और इसराइल ने उनका पीछा किया और आराम का राजा बेनहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब इसराइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और आरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। दूसरे शब्दों में अपने आप को मजबूत कर, हर चीज को सुधार, क्योंकि इस वर्ष के अंत में वो फिर आक्रमण करेगा। अध्याय 20 पर 23। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर पहाड़ों का परमेश्वर है, वो चौरस मैदानी भूमि का परमेश्वर नहीं है। उन लोगों ने परमेश्वर को क्षेत्र के हिसाब से आंका। हमें कभी परमेश्वर को क्षेत्र रूप में नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर सर्वपरि परमेश्वर है, जिसका अर्थ है वो हर समय हर जगह उपस्थित रहता है, इसलिए उसको सीमित परिधि में रखकर देखना उचित नहीं है। कभी कभी हम उसको स्वर्ग के क्षेत्र का परमेश्वर करके देखते हैं, इसलिए वो बहुत दूर और अनजान सा लगता है, क्योंकि स्वर्ग कहाँ है मैं नहीं जानता। वो शायद कहीं दूर अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में इशारा करता हूं, परंतु पृथ्वी तो गोल है, इसलिए पृथ्वी की ओर हो सकता है। यदि मैं अंतरिक्ष की ओर इशारा करके परमेश्वर को ढूंढूं, परंतु हो सकता है मैं अंतरिक्ष में गलत दिशा में देख रहा हूं। यदि मैं उसे किसी विशेष दिशा में ढूंढता हूं तो स्वर्ग तो कहीं भी हो सकता है। मैं परमेश्वर को आराधनालय के दीवारों के भीतर उपस्थित ही सोचता हूं। बहुत बार हम प्रार्थना में ऐसे प्रतीति करते हैं कि वो वहां रहता है। प्रभु, हम आभारी हैं कि हम तेरी उपस्थिति में आज शाम यहां आ सके, हम तेरी उपस्थिति में जमा हो सके। आप जब घर से चले तब भी उसकी उपस्थिति में थे, और जब गाड़ी में चल रहे थे तब भी वो वहां था। आप उसकी उपस्थिति से बच नहीं सकते, इसलिए उसे सीमित स्थान में रखना गलत है। यही उन मूर्ति पूजकों का विचार परमेश्वर के प्रति था। वो पहाड़ी ईश्वर है, और यही तुम्हारी समस्या थी। वो आपसे पहाड़ों में लड़ेंगे, क्योंकि उनका ईश्वर पहाड़ी ईश्वर है, इसलिए तुम हार गए। अगली बार उनसे मैदानी भूमि में लड़ो, क्योंकि उनका ईश्वर तो पहाड़ी है, वो चौरस मैदानों का ईश्वर नहीं है, वहां तुम उनसे जीत जाओगे। उन्होंने कहा, फिर से सेना जमा करो, सब राजाओं को सब रथों को जमा करो और युद्ध करो। इसलिए बेनहदद ने अरामियों की सेना इकट्ठी की और वो लड़ने के लिए आपे को गया। अध्याय 20 पद 27। और इसराइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई, और वे उनका सामना करने को गए, और इसराइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े। वो आशा रहित थे क्योंकि संख्या में कम थे। अध्याय 20 पद 27 में आगे लिखा है, परंतु आरामियों से देश भर गया था। वे मात्र दो छोटे झुंड के जैसे थे, परंतु आरामी संख्या में इतने अधिक थे कि उनसे देश भर गया था। अध्याय 20 पद 28। तब परमेश्वर के उसी जन ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, आरामियों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं, इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूं। इस अवसर पर यह बात बड़ी रोचक लगती है क्योंकि आहाब परमेश्वर से दूर हो गया था और वो एक दुष्ट राजा था, तो भी परमेश्वर उससे बात कर रहा था। आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लो और अपने रास्ते पर चलो, परंतु परमेश्वर आपसे बात करता रहता है। परमेश्वर आपको नहीं भूलता कि नाश न हो जाओ, चाहे आपने उसे भुला दिया हो। परमेश्वर आहाब के बदल जाने के बाद भी बराबर उसे बात करता रहा। परमेश्वर आपसे बातें करता रहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और अपने नजदीक रखना चाहता है, और इस कारण वो आपसे बातें करना बंद नहीं करता है। इसराइल की संतान उनके विरुद्ध मैदानी भूमि पर इकट्ठे हुए और उन्होंने आरामियों को पहले से अधिक मार से मारा। वे भागने लगे। बेनहदद को बंदी बना लिया गया और पकड़कर लाया गया। अध्याय 20 पद 34 से लेकर 43 तक। तब बेनहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं। तब उसने बेनहदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जो ही तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही सिंह से मार डाला जाएगा। तब जो ही वो उसके पास से चला गया त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला और उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको मारा कि वो घायल हुआ। तब वो नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांप कर राजा की बाट जोता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि ये किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किकार भर चांदी देना पड़ेगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वो ना मिला। इसराइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई, तब इसराइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वो कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसा एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यनाश होने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण की संति अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इसराइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शमरोन को आया।